वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरिताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौरा हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री चातुर्मास्य की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जाए। समवेत भक्त वृंद की जाए। समवेत भक्त वृंद की जाए। श्री श्री गुरु गौरांग की जाए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज चातुर्मास का पहला दिन है, इसलिए हम चातुर्मास की चर्चा करेंगे आज के प्रवचन में। वैसे आज गुरु पूर्णिमा भी है, व्यास देव जी को सम्मानित किया जाता है इस दिवस पर, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ साथ श्रील सनातन गोस्वामी पाद का भी तिरुभाव दिवस है, और आशा करते हैं कि सभी मोबाइल फोनों का भी तिरुभाव हो जाए। लेकिन इन सब विषयों के ऊपर चर्चा संभव नहीं है, इसलिए आज सुबह केवल चातुर्मास्य की थोड़ी चर्चा करेंगे। माधवेंदु प्रभु बता रहे थे कि चातुर्मास्य के ऊपर कुछ अनेक वर्षों से कथा हुई नहीं है, तो कुछ होना चाहिए। वैसे आज तो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा है, और चातुर्मास से मतलब चार महीने, तो आज अर्थात आषाढ़ महीने की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक महीने की पूर्णिमा के अंत तक, अभी शुक्ल पक्ष है पूर्णिमा और कार्तिक की पूर्णिमा, मतलब चार पूरे महीने हो जाते हैं, इसको चातुर्मास कहते हैं। अनेक वैष्णव चातुर्मास को देव शयनी एकादशी या शयना एकादशी, जो थोड़े दिन पहले था, उससे लेकर कार्तिक महीने में जो उत्थान एकादशी आती है, उस समय तक ये चार महीने को चातुर्मास मानते हैं। कई वैष्णव संक्रांति से संक्रांति तक मानते हैं। दो दिन पहले कर्क संक्रांति हुई, सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश किया, तो कई वैष्णव ऐसा मानते हैं कि चातुर्मास की शुरुआत कर्क संक्रांति से शुरू होकर चार महीने चलती है। कई कहते हैं कि द्वादशी से, कई कहते हैं अष्टमी से। खैर, कहने का मतलब है कि ये चार महीने जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारी इस्कॉन संस्था में हम लोग आषाढ़ महीने के पूर्णिमा से लेकर कार्तिक महीने के पूर्णिमा तक चातुर्मासी को मानते हैं। इस समय में कई महत्वपूर्ण उत्सव भी होते हैं। शुरुआत तो होती है गुरु पूर्णिमा से या व्यास पूर्णिमा से, और आगे चल के अनेक हमारे आचार्यों के तिरुभाव दिवस भी आते हैं चातुर्मासी के समय। जीव गोस्वामी पाद के तिरुभाव को छोड़कर अन्य सब षड गोस्वामियों की तिरुभाव तिथियां आती हैं। लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की तिरुभाव तिथि, साथ साथ अभी झूलन यात्रा, फिर बलराम पूर्णिमा, फिर जन्माष्टमी, राधाष्टमी, वामन द्वादशी, दशहरा, और आगे चल के फिर कार्तिक महीना आएगा, उसमें तो कितने सारे महत्वपूर्ण उत्सव हैं। तो इसलिए चार महीने भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि कहा जाता है कि इन चार महीनों में भगवान विष्णु शयन करते हैं। देव शयनी एकादशी या शयना एकादशी, देव शयन करते हैं। भगवान नारायण जो है वो जल के ऊपर योग निद्रा में रहते हैं, और कार्तिक महीने में उत्थान एकादशी में वो उठते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान की नींद हमारी नींद की तरह नहीं है। हम जब सो जाते हैं तो हम तमोगुण के प्रभाव में होते हैं, परंतु भगवान तो सदैव गुणातीत रहते हैं, बल्कि तीनों गुण उनके अधीन होते हैं। तो भगवान के नींद को योग निद्रा कहते हैं। उनकी चेतना पूरी तरह से वैसे के वैसे रहती है, परिपूर्ण अवस्था में रहती है, परंतु ये भगवान की लीला है। तो भगवान विष्णु जब इन चार महीनों में शयन करते हैं तो इसे चातुर्मास कहते हैं। नारायण शब्द के अनेक अर्थ हैं। श्रील श्रीधर स्वामी अपने भावार्थ दीपिका टीका में नारायण शब्द के अनेक अर्थ कहते हैं। वैसे ये नर मतलब भगवान, भगवान विष्णु, नार मतलब जो उस नर के अंश हैं या उनसे उत्पन्न होने वाले हैं अर्थात जीव। तो जितने समस्त जीव हैं उनको नार कहते हैं, जो समस्त जीवों को इकट्ठे करेंगे तो नार। और अयन शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। अयन शब्द का एक अर्थ होता है आश्रय। तो नारायण वो हैं जो कि सारे समस्त जीवों के आश्रय हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है। वो शब्द अयन है लेकिन जब जोड़ा जाता है व्याकरण की दृष्टि से अयन हो जाता है, तो नारायण। अयन शब्द का और एक अर्थ होता है प्रवृत्ति। तो नारायण वो हैं जो समस्त जीवों के प्रवृत्तियों के उद्गम हैं, स्रोत हैं। जितने भी प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं वो सब उन्हीं से आती हैं। हम तो कई बार सुन चुके हैं कि हमारे अंदर क्रोध भी कभी आता है क्योंकि भगवान में क्रोध है। ऐसे जितने भी प्रवृत्तियां हम सब के अंदर हैं वो मूल रूप से भगवान के अंदर भी हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। अयन शब्द का और एक अर्थ है जानना। नार अयन, जो समस्त जीवों को जानते हैं भली भांति अच्छी तरह से, उनका भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते हैं, उनको नारायण कहते हैं। और आगे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नार का शब्द और एक भी हो सकता है कि जो नर से जल उत्पन्न होता है उसे भी नार कहते हैं। और अयन मतलब विश्राम करना या जिनका निवास स्थान है। तो भगवान अपने ही दिव्य शरीर से जल को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि महाविष्णु कारण सागर को उत्पन्न करते हैं या गर्भोदक शाय विष्णु गर्भोदक सागर को उत्पन्न करते हैं अपने दिव्य शरीर से। उनका ये दिव्य पसीना है, हमारे पसीने की तरह नहीं है, ये दिव्य जल है। और फिर इसी जल में भगवान शयन करते हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है। तो भगवान अपने ही शरीर से उत्पन्न होने वाले जल में विश्राम करते हैं, शयन करते हैं, परंतु जागृत अवस्था में रहते हैं। केवल इन चार महीनों में वो वास्तव में योग निद्रा में रहते हैं, लक्ष्मी देवी उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। साथ साथ में यहां पर पृथ्वी लोक में ये वर्षा ऋतु का समय है, इन चार महीनों में वर्षा बहुत होती है और इस समय सब जगह कीचड़ कीचड़ होता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। पहले के काल में कोई गाड़ियां नहीं थी, ऐसे रेलगाड़ी नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, हवाई जहाज वगैरह नहीं थे। लोगों को जाना पड़ता तो केवल पैदल जाना पड़ता या तो घोड़े के ऊपर बैलगाड़ी में बैठ के जाना पड़ता। तो भ्रमण करना सफर करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, इसलिए इन चार महीनों में सभी लोग अपने घरों में ही रहते थे, भ्रमण नहीं करते थे। लाइट ऑफ भागवत पुस्तक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि न केवल सन्यासी या प्रचारक बल्कि विद्यार्थी, जो व्यापारी लोग होते हैं और राजा, ये सब अपने अपने स्थानों में रह जाते थे, बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में बाहर जाना बहुत मुश्किल था। राजा लोग वैसे तो भ्रमण करते रहते हैं अपने देश में, देखना चाहते हैं कि क्या क्या चल रहा है, और कभी कोई युद्ध करना पड़ता है तो अपने राज्य के सीमा तक जाना पड़ता है शत्रु का सामना करने के लिए। तो ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं और राजा लोग भी अपने अपने जगह में रहते हैं, विद्यार्थी अपने घरों में रहते हैं, गुरुकुल में नहीं जाते, और फिर व्यापारी है अपने घर में रह के जो भी कुछ करना है कर लेता है, और जो साधु लोग होते हैं वो भी भ्रमण नहीं करते। साधारण तौर से वेदों का प्रचार करने के लिए साधु लोग इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं सबके उद्धार के लिए, परंतु चातुर्मास के समय वो एक ही जगह में बैठ जाते हैं और अपने भजन को और भी तीव्र करते हैं। वैसे बाकी समय 8 महीने साल के वो प्रचार करते रहते हैं, दूसरों को देते रहते हैं, साधना तो करते हैं, परंतु बहुत समय लोगों को प्रचार करने में जाता है, लेकिन ये चार महीने जो हैं इसमें वो केवल अपने लिए अपने साधन भजन के ऊपर जोड़ देते हैं। श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग आता है कि व्यास देव जी अपने गुरु नारद मुनि से जिज्ञासा करते हैं, हे गुरुदेव बताइए कि आप कैसे भक्त बने। ये प्रश्न तो हम सबको पूछा जाता है ना, जब भी जाते हैं लोग भागवत सुनना इतना पसंद नहीं करते, ये जानना पसंद करते हैं कि आप कैसे भक्त बने, ये पहले बताइए। तो ये जिज्ञासा तो सबके अंदर होती है। तो वेद व्यास देव जी ने भी पूछा, तो नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए बताया कि मेरे पूर्व जन्म में मेरी माता एक ब्राह्मण के गुरुकुल में निवास करती थी, वहां सेवा करती थी, और मैं छोटा बच्चा था और चातुर्मास का समय आया, और उस समय अनेक विशेष महान साधु महान वैष्णव भक्ति वेदांत वहां पर आए और चार महीने वहीं पर आश्रम में रहे। और हालांकि ये वैष्णव जो होते हैं समदृष्टि के होते हैं, फिर भी मेरे ऊपर इनकी बड़ी कृपा रही, क्योंकि मैं बड़ा आत्मसंयमी बच्चा था, अन्यों की तरह शरारती नहीं था, और मैं हमेशा उनकी सेवा में लगा रहता था, और केवल एक बार उनकी अनुमति से उनके महाप्रसाद का उनके उच्चिष्ट का मैंने सेवन किया, और उससे मेरे हृदय के अंदर भगवान की कथाओं के प्रति रुचि जागृत होने लगी। और जैसे जैसे मैं उनकी सेवा करता रहा इन चार महीनों में, जबकि वो भजन कीर्तन कथा करते रहे दिन भर, तो मेरी निष्ठा और भी तीव्र होती गई। और चातुर्मास के अंत में जब वहां से प्रस्थान करने का समय आया इन साधुओं का, तो उन्होंने मुझे पात्र समझ के बहुत महत्वपूर्ण गुह्य संदेश प्रदान किए भगवान के भक्ति के बारे में। और जब वो चले गए तो थोड़ी ही देर बाद मेरी माता का देहांत हो गया, एक सांप ने डस लिया उनको, और भगवान की योजना समझ के मैं वहां से निकल पड़ा। और उन साधुओं के संग में जो चातुर्मास के समय मैंने जो भक्ति के संस्कार प्राप्त किए थे, उनके बल पर मैंने भगवान का निरंतर भजन करना शुरू किया, और अंततः मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। ऐसे कई घटनाएं हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि साधु जन एक जगह रह के अपना भजन करते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब माधवेंद्र पुरी भ्रमण करते हुए भगवान के आदेशानुसार नीलाचल में पहुंचे चंदन कर्पूर आदि लेने के लिए, ताकि यहाँ गोवर्धन में स्थित गोपाल जी के दिव्य शरीर पर लेप लगाया जाए, तो जब जगन्नाथपुरी से उन्होंने ये कर्पूर और चंदन एकत्र कर लिया था और वापस लौट रहे थे, तो उस समय पुनः वो रेमुना में गोपीनाथ मंदिर में आए। अब तक तो गोपीनाथ का नाम हो चुका था खीर चोरा गोपीनाथ, क्योंकि जगन्नाथपुरी जाते समय यह सुंदर लीला हुई थी जिसके बारे में आप सब जानते हैं। तो जब लौटे तो वहां पुनः गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के सपने में आए और उन्होंने कहा कि चंदन का लेप वहीं गोपीनाथ को लगाना, गोपीनाथ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गोपाल जी ने देखा कि अगर माधवेंद्रपुरी इतनी दूर ये चंदन को लेकर आएंगे तो बहुत धोखा है, बहुत खतरा है, डकैत हैं, तरह तरह के सरकारी अफसर हैं, अधिकारी व्यक्ति हैं जो हैरान कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहीं लेप लगाओ। तो माधवेंद्रपुरी ने व्यवस्था कर ली बहुत अच्छे ढंग से। गर्मियों के समय में गोपीनाथ जी को चंदन का लेप लगा, और फिर माधवेंद्रपुरी ने देखा कि अब ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो गई है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होने जा रहा है, तो अभी हम जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और चातुर्मास का समय वहां बिताते हैं। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी ने बड़े ही आनंद से चातुर्मास का समय जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके अपना भजन करके बिताया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी एक स्थान में रहा करते थे चातुर्मास के समय। संन्यास लेने के तुरंत बाद जब वो दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा में गए तो वो श्रीरंगम पहुंचे जहां श्री रंगनाथ जी विराजमान हैं, और वहां पर एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे भगवान रंगनाथ के, जिनका नाम था वेंकट भट्ट, और उनके भाई थे जो आगे चल के श्री प्रबोधानंद सरस्वती बने, और उनके पुत्र थे गोपाल भट्ट। तो वेंकट भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया, उनको प्रसाद के लिए अपने घर में निमंत्रण किया। महाप्रभु आए और उस समय वेंकट भट्ट ने उनके चरणों में प्रार्थना की कि मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, चातुर्मास के समय आप मेरे घर में ही निवास कीजिए और कृष्ण कथा करिए और हमारा उद्धार करिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी भक्ति को देखकर उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। वेंकट भट्ट के घर में चैतन्य महाप्रभु लगातार 4 महीने रहे, रोज कावेरी नदी में स्नान करते, रंगनाथ भगवान का दर्शन करते, खूब कीर्तन और नृत्य भगवान के सामने करते, और इससे जितने भी लोग, जितने भी दर्शनार्थी वहां आते, जितने भी यात्रीगण आते वहां, वो विस्मित हो जाते, बहुत प्रभावित हो जाते महाप्रभु को देखकर और उनके कीर्तन और नृत्य को सुनकर देखकर। और कृष्ण के अलावा किसी दूसरे चीज के बारे में सोचते ही नहीं थे, केवल कृष्ण नाम का उच्चारण करते रहते, और जब वो अपने गांव में फिर से चले जाते तो वहां पर भी केवल सबको कृष्ण भक्त बना देते। चातुर्मास के समय ही चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में वो सुंदर संवाद हुआ जिसका विस्तार में वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं। वेंकट भट्ट सोचते थे कि लक्ष्मी नारायण ही भगवान के मूल स्वरूप हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको राधा कृष्ण के बारे में बतलाया। ये बहुत ही सुंदर संवाद है, सबके लिए पढ़ने योग्य है चैतन्य चरितामृत में। और यही समय था जबकि महाप्रभु ने उस बूढ़े ब्राह्मण के ऊपर कृपा की जो ठीक से भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहे थे, परंतु वो केवल इसलिए पढ़ रहे थे कि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था। और महाप्रभु ने जब उनको पूछा कि आप ये क्यों रोज पढ़ते हो अगर आपको ठीक से पढ़ना नहीं आता, और आपके आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, तो उस ब्राह्मण ने बताया कि मैं सोच रहा हूं कि भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं, और वो भगवान वो उनके भक्त के आदेश अनुसार उनका रथ चला रहे हैं। भगवान जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो आज अपने भक्तों के दास बने हैं। तो ये सारी घटनाएं श्रीरंगम में हुई चातुर्मास के समय, जबकि चैतन्य महाप्रभु वहां निवास करते थे। जब महाप्रभु लौट के आए तो फिर चातुर्मास के समय मध्य लीला में भी वो जगन्नाथपुरी के बाहर नहीं गए, बल्कि बंगाल के भक्त बंगाल से हर साल चातुर्मास के समय आया करते थे, बल्कि चातुर्मास से थोड़े पहले, क्योंकि रथयात्रा के समय में भी ज्यादा भक्त उपस्थित हुआ करते थे। आप तो जानते हैं कि रथयात्रा का उत्सव थोड़े दिन पहले हुआ, चातुर्मास के पहले ही, तो रथयात्रा के पहले ही बंगाल से भक्त आ जाते और चातुर्मास के अंत तक रहते, और महाप्रभु के साथ जितने भी अनुष्ठान, जितने भी उत्सव इस दौरान होते हैं, उन सबको बड़े हर्षोल्लास से, दिव्य आनंद से मनाते। भगवान श्री रामचंद्र ने भी चातुर्मास किष्किंधा क्षेत्र में मनाया। जब सीता देवी का अपहरण हुआ और सीता देवी को ढूंढते ढूंढते जब दक्षिण की ओर जा रहे थे भगवान लक्ष्मण जी के साथ में, बहुत शोक कर रहे थे, एक साधारण मनुष्य की नकल कर रहे थे, तो वो किष्किंधा क्षेत्र पहुंचे दक्षिण भारत में, और वहां पे सुग्रीव से दोस्ती का एक समझौता कर लिया सुग्रीव भी बड़े पीड़ित थे। सुग्रीव के भाई वाली ने सुग्रीव को राज्य से बाहर हटा दिया था और जान का खतरा था, और इसलिए सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते थे। क्योंकि एक बार वाली ने दुंदुभि नाम के राक्षस का वध किया था और केवल लात मार के उसे इतने दूर भेज दिया था कि वो जाके मतंग ऋषि के आश्रम में गिर पड़ा था। मतंग ऋषि ने देखा कि वो ध्यान में बैठे थे, आंख खोल के देखा कि ये क्या है, सब जगह खून खून है, किसने मेरे आश्रम को दूषित किया है, तो जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वो अगर यहाँ इस ऋषिमुख पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसका देहांत हो जाएगा, ऐसे शाप कह दिया। तो जब वाली ने यह सुना तो उस दिन के बाद वाली यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आए। इसलिए सुग्रीव, हनुमान और उनके तीन पार्षद वहां रहा करते थे। तो श्री रामचंद्र ने सुग्रीव के साथ ये समझौता कर लिया कि मैं वाली की हत्या करूंगा और तुम मुझे सीता देवी को ढूंढने में मदद करोगे। तो फिर जब वाली की हत्या कर दी श्री रामचंद्र ने, तो वाली को राज सिंहासन पर बिठाने का समय आ गया, राज्यभिषेक का समय आ गया। जब हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि आइए किष्किंधा के अंदर, अब राज्याभिषेक होने वाला है, सुग्रीव राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, तो श्री राम ने कहा कि मैंने तो मेरे पिता को वचन दिया है कि 14 साल में वनवास में रहूंगा। अब शहर की बात तो दूर है, मैं किसी गांव में भी नहीं प्रवेश कर सकता, मैं तो केवल वन में ही रह सकता हूं, इसलिए आप सब जाओ, अनुष्ठान जो करना है उसे शीघ्र ही कर लो। और वैसे भी अब वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है, नायम उद्योग समय कि न अयम उद्योग समय, कि यह समय जब चातुर्मास शुरू हो गया है ये किसी उद्योग के लिए, किसी परिश्रम के लिए, किसी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उचित समय नहीं है। किस कार्य के बारे में भगवान कह रहे थे? सीता देवी को फिर से बुला के ले आना। इसमें तो काफी संघर्ष होना था, काफी परिश्रम होना था, तो श्री रामचंद्र ने कहा कि ये परिश्रम का समय नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर निवास करूंगा और सुग्रीव को राजा बन जाने दो, और चातुर्मास का समय जब हो जाएगा तब सीता देवी की खोज में तुम सब लग जाना। तो श्री रामचंद्र भी वहीं पर बैठे किष्किंधा क्षेत्र में 4 महीने। वो स्थान अभी तक है किष्किंधा में, हम्पी नाम का छोटा सा शहर है, वहां पे कई तीर्थ स्थान है जहां श्री रामचंद्र लक्ष्मण के साथ और सीता देवी के साथ रहे। चातुर्मास में अर्जुन और सुभद्रा देवी की भी लीला हुई। जब अर्जुन ने सुना कि बलराम जी अब योजना बना रहे हैं कि सुभद्रा देवी का विवाह दुर्योधन से होना चाहिए, तो तुरंत अर्जुन द्वारका में पहुंच गए। वैसे कोई और नहीं चाहता था, सुभद्रा तो वसुदेव और देवकी की पुत्री थी, कन्या थी, कृष्ण और बलराम की बहन। दुर्योधन बलराम के बहुत प्रिय थे क्योंकि वो गदा युद्ध में बड़े निपुण थे। बलराम जी प्रसन्न थे दुर्योधन के ऊपर, सोचा कि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहिए। लेकिन कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, वसुदेव देवकी को अच्छा नहीं लगा, किसी और को अच्छा नहीं लगा। तो अर्जुन ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो श्री कृष्ण के साथ एक षड्यंत्र बना। क्या षड्यंत्र हुआ कि वहां पर अर्जुन एक सन्यासी का वेश धारण करके आए, और चातुर्मास का समय शुरू हो चुका, तो चातुर्मास के समय तो ऐसे सब नहीं कर सकते, किसी का अपहरण करके ले जाना, विवाह करना, ये सब चातुर्मास के समय में नहीं होता। तो वे पूरे के पूरे 4 महीने अर्जुन द्वारका में रहे सन्यासी के वेश में, त्रिदंड सब था उनके पास, और भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव में कोई भी समझ नहीं पाया कि ये अर्जुन है। बलराम जी भी स्वयं समझ नहीं पाए, हालांकि वो तो स्वयं भगवान है, ये तो भगवान की लीलाएं हैं सब। और जब चातुर्मास का अंत होता है तो उत्थान एकादशी में एक प्रथा है कि भगवान की रथ यात्रा होती है, तो भगवान विष्णु की रथ यात्रा का समय था और सुभद्रा देवी भी वहां पर आई थी। इसके पहले जब बलराम जी ने इस साधु को घर में निमंत्रण दिया था, न जानते हुए कि ये अर्जुन है, तो अर्जुन जी वहां पर गए थे और उन्होंने सुभद्रा को देखा और दोनों के मन में इच्छा हुई एक दूसरे से विवाह करने के लिए। सुभद्रा देवी जान गई कि ये तो सन्यासी नहीं है और फिर उन्होंने तय कर लिया मन ही मन में कि विवाह करना है। अब करें कैसे जब बलराम जी की इच्छा है कि इनका विवाह दुर्योधन से हो जाए। तो खैर जब ये रथ यात्रा हुई उत्थान एकादशी के दिन, तो वहां पर अर्जुन आए, उन्होंने अपहरण किया जैसे क्षत्रिय कुल में कभी कभी ऐसे किया जाता है और उठाकर वो ले गए सुभद्रा देवी को। उधर बलराम जी आग बबूले हो गए, बहुत क्रोध आया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहले से सब योजना बनी थी ना, कृष्ण ही तो बनाया था सब योजना। तो बलराम जी के पैर पड़े और सारे यदुकुल के निवासी जो थे, यदुवंश के लोगों ने आकर बलराम जी को शांत किया। फिर बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़े धूमधाम से विवाह हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रथा ये है कि चातुर्मास के समय कोई भ्रमण नहीं करते थे, परंतु प्रभुपाद जी ने खूब भ्रमण किया। अब हमने इतिहास तो कह दिया, अनेक वर्षों पहले का इतिहास। तो प्रभुपाद जी ने भ्रमण क्यों किया चातुर्मास के समय? देखिए पुराने जमाने में जैसे हम पहले कह रहे थे, ना रेलगाड़ी थी, ना हवाई जहाज थे, ना गाड़ियां थी, ना कुछ थे, तो चल के जाना पड़ता सन्यासियों को, बहुत मुश्किल था। सन्यासियों के लिए नियम था कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए। आज भी कई संप्रदाय हैं जिनमें अगर कोई सन्यासी समुद्र पार करे तो उन्हें बहिष्कृत किया जाता है कि आप यहाँ नहीं आ सकते, हमारे संप्रदाय से बाहर हो गए, या तो आप हमारे मंदिर में विग्रह की पूजा नहीं कर सकते। बस एक साल पहले ही ऐसे घटना हुई थी एक जगह, और क्योंकि एक सन्यासी प्रचार के लिए बाहर गए थे, अमेरिका में गए थे, बड़े शुद्ध सन्यासी हैं, ऐसे कोई दोष नहीं कुछ नहीं, फिर भी अन्यों ने बहुत विरोध किया। और जब उनका समय आया भगवान की पूजा करने के लिए तो बहुत विरोध हुआ, बात अदालत तक पहुंची और अदालत ने कह दिया कि नहीं करने देना चाहिए। तो पुराने विचारों में जो है वो इन नियमों को बहुत कट्टरता से पालन करते हैं, परंतु जो प्रचार के भाव में हैं, जो गोष्ठानंदी होते हैं, वो देखते हैं कि प्रचार कैसे किया जाए, अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कैसे किया जाए। प्रभुपाद ने जान लिया कि मैं तो अब वृद्ध हूं, मेरे कितने साल बचे हैं भगवान ही जाने, अभी जो थोड़ा समय मेरे पास बचा है जितना हो सके मुझे प्रचार करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी उस वृद्ध अवस्था में भी सब जगह इस पृथ्वी का भ्रमण 14 बार करे, केवल 12 वर्षों में 14 बार उन्होंने भ्रमण किया। ऐसा प्राय कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं गए, अफ्रीका में गए, अमेरिका में गए, यूरोप में, सब जगह गए। तो प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से सिखलाया कि नियम अपने जगह में ठीक हैं, अपना साधन भजन तो करना ही चाहिए, उसके बिना प्रचार क्या होगा, उसके बिना कुछ भी क्या होगा। साधन भजन तो अपना मूल है, अपना आधार है, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, परंतु ये सब कुछ नहीं है। अगर हम साधन भजन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो कीर्तन भी तो करना चाहिए, हमें जाके अन्यों को भी इसका लाभ देना चाहिए। यहां लोग कलयुग के प्रभाव में, इस भौतिक सृष्टि में बहुत दुख के मारे तड़प रहे हैं, तो उन तक ये कृष्ण भावना का संदेश पहुंचाना अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। तो इस भाव को हृदय में रख के प्रभुपाद जी ने ऐसे कई चीजें किए कि जो कि सन्यासी लोग नहीं किया करते थे। उन्होंने जाके विवाह यज्ञ में भी उन्होंने बैठ के यज्ञ किया, जो कि सन्यासी तो कभी करते नहीं है, क्योंकि उस समय कोई था नहीं जो ये सब कर सके। उन्होंने पश्चिम देश में जन्म हुए लोगों को संन्यास दिया, उन्होंने माताओं को गायत्री मंत्र प्रदान किया जो कि पहले कभी नहीं किया गया था, परंतु प्रभुपाद जी ने देखा कि ये प्रचार के लिए आवश्यक है। अगर एक विश्वव्यापी हमें भक्ति का आंदोलन स्थापित करना है तो ये सब चीजें आवश्यक हैं। पुराने विचारों से अगर हम बैठेंगे तो भक्ति का प्रचार होना संभव नहीं है। एक बार शुरुआत में जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की थी तो किसी एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी ये चातुर्मास क्या होता है, इसमें हमने सुना है कि कई नियम होते हैं, विधि विधान कई होते हैं, तो हम भी क्या चातुर्मास के व्रत का पालन कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अरे चातुर्मास भूल जाओ, पहले मेरे भक्तों को 16 माला और जप करने दो, चार नियम का पालन करने दो, फिर हम आगे चातुर्मास की बात करेंगे। मतलब उस समय शुरुआत में अभी तक संस्था इतनी बड़ी नहीं थी, इतने भक्त इतने पक्के हुए नहीं थे, अधिक संख्या में नहीं थे, तो प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे भक्त परिपक्व होने लगे, फिर प्रभुपाद जी ने नियम एक के बाद एक शुरू करवाए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, चातुर्मास करना चाहिए, चातुर्मास के जितने भी नियम हैं, भले सारे नहीं, थोड़े तो कम से कम करने चाहिए। ऐसे नियम तो इतने हैं कि क्या कहना, परंतु हम सारे नियम पालन नहीं करते हैं। उदाहरण से, ऐसे अनेक खाद्य पदार्थ हैं जो चातुर्मास के समय वर्जित हैं, अनेक सब्जियां भी हैं, टमाटर नहीं खाना और बैंगन नहीं खाना, गाजर नहीं खाना और कितने सारे चीजें हैं। लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि ये बाहर प्रचार के लिए ये बहुत बाधक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने खिलाया भक्तों को और खुद भी खाए। और ऐसे भी नियम हैं, दाढ़ी बढ़ानी चाहिए और नाखून काटने नहीं चाहिए, परंतु प्रभुपाद जी ने दाढ़ी बढ़ाई नहीं, नाखून काटे। और इस्कॉन में ऐसी प्रथा हम नहीं देखते हैं इतने सालों में कि चातुर्मास के समय सभी लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये प्रचार का आंदोलन है। कभी कभी जब प्रचार के लिए जाते हैं, भ्रमण में जाते हैं, तो ठीक ठाक व्यक्ति को दिखाई पड़ना चाहिए। कभी कभी लंबी लंबी दाढ़ी लेकर जाते हैं, लोग घबरा भी जाते हैं, क्या प्रचार करेंगे उनके साथ। तो प्रभुपाद जी बहुत ही उदार दृष्टि के थे, उनके सोच विचार बिल्कुल ऐसे थे कि बस इसलिए तो ये संस्था आज तक विश्वव्यापी हो गई है। वो जानते थे कि कैसे दोनों का समन्वय करना, दोनों का संतुलन कैसे करना, एक ओर नियमों का पालन करना और दूसरी ओर एक विश्वव्यापी आंदोलन को स्थापना करना, दोनों को कैसे संतुलित किया जाए। तो प्रभुपाद जी बड़े बुद्धिमान थे, तो उन्होंने किए। वैसे कर्मकांड का पालन करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत कट्टरता से इन नियमों का पालन करते हैं, कठोर नियम होते हैं कई, जैसे कि अगर भोजन लेना है तो दिन में एक बार ही लेना है, वो भी बिना तेल के, बिना इसके, बिना उसके, और जमीन के ऊपर, पत्थर के ऊपर या तो एक पत्र के ऊपर, और हमें जमीन पे सोना है, खटिए के ऊपर सोना नहीं है, और ऐसे कितने बहुत सारे नियम हैं। परंतु कर्मकांडी लोग जो हैं वो इन सारे नियमों का पालन करते हैं, इन तपस्याओं को करते हैं स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए, किसी भोग के लिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवद्यन्त्य विपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा। ये कामात्मानः, ये काम से प्रेरित होकर वो बहुत कुछ चाहते हैं, क्रिया विशेष बहुलाम, वो ऐसे बड़े बड़े कार्य संपन्न करना चाहते हैं, ऐश्वर्यशाली कार्य, भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य के पीछे वो लोग केवल कर्मकांड के नियमों का पालन करना चाहते हैं, सोचते हैं कि वेदों का उद्देश्य ही यही है, इसलिए वो वेदवाद रता पार्थ, वो तथाकथित वेद के अनुयायी हैं, क्योंकि चातुर्मास का असली उद्देश्य क्या है वो नहीं समझ पाए हैं। चौथे अध्याय में जब श्री कृष्ण बताते हैं कि तरह तरह के यज्ञ होते हैं, उनमें वो कहते हैं कि एक है द्रव्यमय यज्ञ, जिसमें आदमी अपने भौतिक संपत्ति को त्यागता है या दान में देता है। दूसरा है योगमय यज्ञ, जब व्यक्ति आसन प्राणायाम आदि करके तपस्या करके किसी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है या भगवान में लीन होना चाहता है। और एक यज्ञ है जिसे तपोमय यज्ञ कहते हैं, जब कोई व्यक्ति चंद्रायण चातुर्मास्य ऐसे व्रतों का पालन करता है, किसके लिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और विशेष भोग की प्राप्ति के लिए। और वहां जाकर उनका उद्देश्य है कि सोम रस का पान करना। ऐसे कर्मकांड ग्रंथों में लिखा गया है कि हाँ ऐसे ये सब नियम पालन करेंगे तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होकर वहां सोम रस का पान करना करने का अवसर हमें मिलेगा। सोम रस वो स्वर्ग रस, स्वर्ग लोक का कोका कोला है, वहां के निवासी इसका पान बड़े आनंद से करते हैं। लेकिन यहाँ के जो अल्प बुद्धि के लोग हैं वो भगवान कृष्ण के कथा के अमृत का रस को छोड़कर उस सोम रस के अमृत का पान करना चाहते हैं। सच्चा रस तो यहाँ भी उपलब्ध है और देवता गण भी देवलोक छोड़कर यहाँ आते हैं जब भागवत कथा होती है सुनने के लिए, इस रस का पान करने के लिए। जब शुकदेव गोस्वामी ने भागवत कथा की थी परीक्षित महाराज को तो ब्रह्मांड भर से लोग आए थे। श्रीमद् भागवत में नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषिगण सूत गोस्वामी से कहते हैं, कर्मण्यस्मिन् नाशवासे धूमा धूम्रात्मनाम भवान आपाययति गोविंदः पाद पद्मासवम मधु। वो कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी जी, बहुत अच्छा हो कि आप यहां पर पधारे और आप हमें कृष्ण कथा दे रहे हैं जो कि अमृत तुल्य है। गोविंद पाद पद्म आसवम मधु, ये आसव है, ये बहुत एक ऐसा पेय है, पेय मतलब पीने की चीज, ऐसा पेय है जो मधु, बहुत ही मधुर है, अमृत है। अब इस अमृत का, इस पेय को लेकर हम बहुत संतुष्ट हो गए हैं। पहले क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग ये कर्म कांड के अलग अलग यज्ञ कर रहे थे विश्व की भलाई के लिए, कुछ लाभ हुआ नहीं। इसका परिणाम एक ही हुआ, क्या है? धूमा धूम्रात्मनाम भवान, ये हमारे मुख जो है इस अग्नि के धुएं से काले हो गए हैं, बस इतना लाभ हुआ है। लेकिन अब जबकि आप यहां पर आए हैं और इस अमृत का पान हमें करा रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि हमारा जीवन अब सफल हो गया। तो कर्म कांड का पालन करने वाले लोग वो सोम रस पीने के लिए स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक में रह के उससे श्रेष्ठ कृष्णामृत, कृष्ण कथामृत का रस हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्त लोग कभी भी ये कर्म कांड के उद्देश्य से चातुर्मास का पालन नहीं करते। ऐसे कई चीजें हैं जो कर्म कांड का पालन करने वाले करते हैं और भक्त भी करते हैं, जैसे एकादशी का पालन हो, गाय की सेवा हो, तुलसी की सेवा हो, भगवान की मूर्ति की सेवा हो, नाम संकीर्तन हो, चातुर्मास्य के व्रत का पालन हो, ये सब चीजें कर्मकांडीय लोग भी करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य क्या रहता है? भोग की प्राप्ति। और भगवान श्री कृष्ण के भक्त करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि वो इन नियमों का पालन करके, इन व्रतों का पालन करके वो भक्ति में आगे बढ़े। तो इसलिए हम इन नियमों से, उन नियमों को चुनते हैं जैसे हमारे आचार्यों ने बताया हुआ है, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत लाभदायक हों, जो भक्ति के लिए अनुकूल हों। तो इसलिए अगर जो अति तपस्या है, जो शरीर, जिससे शरीर को अति कष्ट पहुंचे, ऐसे तपस्याएं हम लोग नहीं करते हैं। ज्यादा जोर दिया जाता है अपने साधन भजन के ऊपर, अपनी सेवा के ऊपर और प्रचार के ऊपर। एक बार जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य ने कहा कि आज मैं उपवास कर रहा हूं तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे कहा खाओ लेकिन सेवा करो। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि आवर्स इज अ प्रीचिंग मिशन नॉट अ फास्टिंग मिशन, कि हमारा आंदोलन ये प्रचार का आंदोलन है, उपवास का आंदोलन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उपवास नहीं करना चाहिए, जिन दिनों में उपवास करना उचित है उन दिनों में करना चाहिए, परंतु उपवास के नाम पर हमें आलसी नहीं होना चाहिए, सेवा को त्यागना नहीं चाहिए, साधन भजन को त्यागना नहीं चाहिए, यह मूल बात है। तो खैर, इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि चातुर्मास्य केवल भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है, तो सारी हमारी दृष्टि जो है वो बदल जाती है। तो हमारे लिए विशेष करके कौन सी तपस्याएं आवश्यक हैं जबकि हम लोग भक्त हैं? प्रभुपाद जी ने स्कंद पुराण में से प्रमाण देते हुए बताया कि इस चातुर्मास के पहले महीने में हम लोग पालक आदि सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं, दूसरे महीने में हम लोग दही का सेवन नहीं करते, तीसरे महीने में दूध का सेवन नहीं करते और चौथे महीने में उड़द दाल का सेवन नहीं करते। उड़द दाल, मसूर दाल, मसूर दाल तो वैसे भी हम लोग नहीं लेते, और यहाँ तक कि सरसों का तेल भी नहीं लेना है चौथे महीने में। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो चीज प्रोटीन युक्त हो, प्रोटीन आप समझते हैं ना, जिससे मसल, जिससे ताकत बढ़ती है, जिसमें जिस वस्तु में प्रोटीन बहुत ज्यादा है वो शाकाहारी नहीं माना जाता। इसलिए हम लोग ये सोयाबीन, कभी कभी भक्त लोग छुप छुप के सोयाबीन करते हैं, पकाते हैं, ये अच्छा नहीं है। सोयाबीन विशेष करके ब्रह्मचारियों के लिए अच्छा नहीं है, सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। बल्कि इसका विज्ञापन ऐसे ही होता है कि आप अगर शाकाहारी हैं और आपको प्रोटीन चाहिए तो सोयाबीन खाइए। फिर मसूर दाल में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और उड़द दाल में भी होता है, उतना नहीं लेकिन फिर भी होता है। लेकिन चातुर्मास के समय कार्तिक महीने में हम उड़द दाल भी नहीं लेते, इसलिए इडली डोसा वगैरह बंद हो जाता है। तो ये चार चीजें कम से कम हमारे लिए, इतनी तपस्या तो है। दूसरी बात, इंद्रिय तृप्ति को हमें कम करना है। ऐसा नहीं कि ये चार चीजें हैं तो बस इतना काफी है, इतना करेंगे बाकी बस खूब हम भोग करके खाएंगे पिएंगे, नहीं। उद्देश्य है तपस्या का। जब हम ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने बहुत छूट दी थी प्रचार के नाम पर, इसको बहाना बनाकर हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना नहीं चाहिए। मूल बात यह है कि हमारा भोजन, हमारा आहार भी बहुत सरल होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा ऐश्वर्यशाली भोजन नहीं लेना चाहिए। कई भक्त हैं जो केवल दिन में एक बार भोजन करते हैं, हविषान्न केवल खिचड़ी एक बार खाते हैं, उसमें भी तेल नहीं और नमक नहीं। अगर कोई कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो बस व्रत लेके बैठना और एक महीने के बाद तोड़ना, वो ठीक नहीं है। अगर हम कोई व्रत लेते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए, ये बहुत गंभीर बात है। व्रत लेना कोई साधारण चीज नहीं है, बस यूं ही व्रत नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर व्रत लेना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आगे मेरी क्या सेवा है, मेरी दिनचर्या कैसे होती है और आगे चल के मैं इसका पूरी तरह से पालन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तब सोच समझ कर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग जो कर पाते हैं ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन नकल करना नहीं चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, इतने जितना हमें प्रभुपाद जी ने बताया उतना हम भले करें। तो इन चार चीजों को, मतलब अलग अलग समय में पालक, दही, दूध, उड़द दाल वर्जित, भोजन को बहुत सरल करना है, साथ साथ में ग्राम्य कथा या प्रजल्प नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा केवल भगवान की सेवा, भगवान की कथा, इसमें ही हमें रुचि रखनी है। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, जगह जगह घूमना फिरना, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन बहुत सरल बनाना चाहिए, विशेष करके इन चार महीनों में। और शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि इस चातुर्मास के लिए सबसे प्रमुख तपस्या जो कि स्कंद पुराण में चातुर्मास महात्म्य में है, वो है भगवान के नाम का कीर्तन। ये सबसे महत्वपूर्ण तपस्या है। तथा चैवोत्तमम लोके तपः श्री हरि कीर्तनम कलो युगे विशेषेण विष्णु प्रीत्यै समाचरेत। तो तथा च एव उत्तमम लोके तपः, तो इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में सबसे उत्तम तपस्या कौन सी है? श्री हरि कीर्तनम। तो ठीक है, अन्य बातें दूर है, दिन में एक बार खाना, ये नहीं करना, जमीन में सोना, वो सब ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण तपस्या हमारे लिए है हरि नाम का संकीर्तन। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए नियम है चातुर्मास के लिए। हमारे यहां सौभाग्य से अखंड कीर्तन होता है, 24 घंटे कीर्तन चलता है, तो इन चार महीनों में हम और ज्यादा समय कीर्तन के लिए दे सकते हैं। किसी भी समय भक्तों के साथ में बैठकर वहां कीर्तन में शामिल हो सकते हैं। साथ साथ कम से कम हम सब 16 माला जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हम मालाओं को बढ़ा सकते हैं, एक संकल्प ले सकते हैं, ठीक है हम 18 माला जप करेंगे आज से चार महीनों के लिए, 20 माला करेंगे, 25 माला करेंगे, यथाशक्ति। लेकिन बस जोश में आकर हम 64 माला करेंगे और फिर एक हफ्ते बाद में देखना कि भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हरि नाम सबसे प्रमुख तपस्या हमारे लिए है, सबसे महत्वपूर्ण नियम। बाकी नियम हम पालन कर सके या नहीं कर सके, लेकिन ये अवश्य करना चाहिए। और ये जो पालक आदि का है, इसको भी तो कम से कम करना चाहिए। दूसरा, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी हरि भक्ति सुदोदय से प्रमाण देखकर भगवान विष्णु के मंदिर की प्रदक्षिणा या परिक्रमा का महात्म्य बताते हैं। विष्णु प्रदक्षिणी कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः तद एवावर्तनम तस्य पुनर्नावर्तते भवे। विष्णु प्रदक्षिणी कुर्वन, भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के मंदिर की प्रदक्षिणा करने से यह तत्र आवर्तते पुनः, जब वो विष्णु के मंदिर की घूमता है और पुनः आवर्तते उसी स्थान में पहुंचता है जहां से उसने शुरू किया, मतलब प्रदक्षिणा करता है, तद एव आवर्तनम तस्य, तो ऐसे आवर्तनम से, ऐसे लौट के आने से क्या होता है? पुनः न आवर्तते भवे, पुनः उसे भव सागर में लौट के नहीं आना पड़ता। तो ये लौट के आना, जो मंदिर को घूम कर फिर से लौट के आना जिस स्थान से हमने शुरू की थी प्रदक्षिणा को, उस लौटने से हमें भव सागर में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कम से कम 4 बार विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तो जितना अधिक करे उतना अच्छा है। तो चातुर्मास के समय विशेष करके भगवान विष्णु के मंदिर की प्रदक्षिणा हम कर सकते हैं जप करते समय, कीर्तन करते समय। और श्रील जीव गोस्वामी अपनी टीका में कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान विष्णु के प्रदक्षिणा करना ये अनेक तीर्थ स्थानों में जाने से ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि ऐसा करने से भक्ति में हम बहुत तीव्रता से, तेजी से प्रगति कर सकते हैं। हम लोग यहां वहां उधर तीर्थ स्थानों में जाएंगे, गंगा में जाएंगे, कहीं जाएंगे, जीव गोस्वामी कहते हैं उतनी तपस्या नहीं होगी, उतनी प्रगति नहीं होगी। और जब चातुर्मास्य में ऐसी प्रदक्षिणा की जाती है तो जो लाभ प्राप्त होता है वो तीर्थ स्थानों में जाने से, सारे ब्रह्मांड को भ्रमण करने से भी अधिक होता है, और बहुत जल्दी से हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। चातुर्मास्य महात्म्य जो स्कंद पुराण में, इसमें यह भी बताया गया है कि हमें अधिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो हमारे लिए अभी प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि ठीक है, अभी चातुर्मास आज से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण नाम जप और नाम संकीर्तन पे बहुत जोर देना चाहिए, बहुत ध्यान से करना चाहिए और जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहिए यथाशक्ति। दूसरी बात, हमें भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा रोज करनी चाहिए, कम से कम 4 बार। तीसरी बात, हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों का ध्यान पूर्वक प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। चौथी बात, हमारे बाकी समय का सदुपयोग करना चाहिए, ग्राम्य कथा में इधर उधर समय को गंवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ फिजूल समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, भगवत कथा भगवत सेवा में ही सारा समय अपना बिताना चाहिए। अगली बात, अपने जीवन को बहुत ही सरल बनाना चाहिए, अपना रहन सहन अपना खान पान बहुत सिंपल बहुत सरल होना चाहिए, और ये 4 चीजें अवश्य हमें करनी चाहिए कि पहले महीने में पालक नहीं, दूसरे महीने में दही नहीं, तीसरे महीने में दूध नहीं, चौथे महीने में उड़द दाल नहीं। और बहुत सी चीजें हैं, नियम वगैरह हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना हम करें और भक्ति के ऊपर जोड़ दें तो हमारा चातुर्मास्य सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न? चतुर्मास का उत्पत्ति इतिहास, वैसे ये तो शास्त्र में है, स्कंद पुराण में दिया गया है, चातुर्मास महात्म्य एक भाग है उसका, ऐसे हमने बताया, ये यही इसकी उत्पत्ति कारण है कि भगवान का शयन होता है, भगवान सोते हैं जल में, निद्रा में है तो हमें भी जमीन में सोना चाहिए, ऐसे बताया जाता है। और इस समय में भक्ति करने से हमें अधिक लाभ मिलता है, ये तपस्या का समय है। हाँ, भगवान बड़े कृपालु होते हैं, तो इस समय का सदुपयोग करके भगवान हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई आसान तरीके देते हैं। भगवान तो बस बहाना ढूंढते हैं भक्तों को तेजी से प्रगति करने के लिए, कोई रास्ता दिलाने के लिए, एकादशी दे देते हैं, कोई चतुर्मास दे देते हैं, उसमें से कार्तिक, हर समय में कोई उत्सव होते हैं, उनके आविर्भाव दिवस, उनके अन्य अनेक दिवस होते हैं। बस उत्सव क्या है, भगवान ने बनाए हुए बहाने हैं हम सब के लिए आगे चल के और प्रगति करने के लिए, भगवान के भक्ति मार्ग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चातुर्मास्य की जय। गौर प्रेमानंदे।